लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मानव व्यक्ति की गरिमा पर हमला करने वाले मृत्यु दंड का प्रत्येक देश में कानूनी रूप से उन्मूलन किया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां सत्र मंगलवार 13 सितंबर से आरंभ हो गया है और 19 सितंबर से 26 सितंबर तक होने वाले आम सभा डिबेट में भाग लेने के लिए विश्व भर से सरकार के प्रमुख और राष्ट्राध्यक्ष न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। महासभा के नए अध्यक्ष श्री कसावा कोरोसी ने विश्व नेताओं से यूक्रेन में युद्ध समेत मानवता के समक्ष मौजूद सबसे कठिन चुनौतियों से निपटने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि गहरी दरारों को दूर करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने और पुल निर्माण करने की जरूरत होगी। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासभा के 77वें सत्र के दौरान वार्षिक जनरल डिबेट 20 सितंबर को आरंभ हुआ। यूएन महासचिव ने महासभा के उद्घाटन दिवस पर अपने संबोधन में चिंता जताई कि दुनिया मुश्किलों में घिरी हुई है और वैश्विक कार्यवाही लरचपन का शिकार है। उन्होंने एक वैश्विक गठबंधन की पुकार लगाई। एक रिपोर्ट के साथ सचिन गौड़।
यूएन के शीर्षतम अधिकारी ने अपने संबोधन में संगठन के कामकाज पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जीवन व्यापन की कीमत का संकट उफान पर है, दरारें और असमानताएं गहरी हो रही हैं, भरोसा दरक रहा है, पृथ्वी जल रही है। महासचिव गुटेरेश ने कहा कि यूएन चार्टर और उसमें दर्शाए गए उसके आदर्श जोखिम में है। इन हालात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने साझा कार्रवाई की पुकार लगाई है।
So let's develop common solutions to common problems, grounded in goodwill, trust and the rights shared by every human being. Let's work as one.
यूएन प्रमुख कह रहे थे कि आइए हम साझा समस्याओं के साझा समाधान विकसित करें, जिनकी बुनियाद में सद्भावना, भरोसा और हर मनुष्य द्वारा साझा किए जाने वाले अधिकार हों। मिलकर काम करें एक वैश्विक गठबंधन के रूप में, संयुक्त राष्ट्र के रूप में। यूएन महासचिव ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान और मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करते हुए समन्वित कार्रवाई पर बल दिया। वहीं यूएन महासभा के 77वें सत्र के लिए अध्यक्ष कसावा कोरोसी ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया अतीत के 4 दशकों में सबसे अहम पड़ाव पर है और मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से एकजुटता, सततता और विज्ञान से प्राप्त समाधानों से निपटा जाना होगा।
I stand ready to support member states to identify transformative, impact-oriented, systemic...
महासभा अध्यक्ष कह रहे थे कि रूपांतरकारी, व्यवस्थागत और टिकाऊ समाधानों के लिए वो सदस्य देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में जल उपलब्धता, कानून के राज के प्रति सार्वभौमिक सम्मान, मानवाधिकारों को गिनाया है। इस बीच यूएन महासभा में जनरल डिबेट जारी है, जहां विश्व नेता इस वैश्विक मंच से दुनिया के सामने अपना संदेश प्रस्तुत कर रहे हैं।
रूसी महासंघ के विदेश मंत्री सरगेई लेवरोफ ने संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन की सरकार ने पूर्वी हिस्से में अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा हुआ था और पश्चिमी देश बातचीत के लिए असमर्थ नजर आ रहे थे। इन हालात में रूस के पास यूक्रेन में तथाकथित विशेष सैन्य अभियान को शुरू करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने वीडियो द्वारा यूएन महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके देश के विरुद्ध गैर कानूनी युद्ध छेड़ने के लिए रूस को दंडित किया जाना होगा। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसे शांति फॉर्मूले का हिस्सा होना चाहिए जिसमें नागरिकों की रक्षा व प्रतिरक्षा प्रयासों के लिए समर्थन का भी ध्यान रखा जाए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि म्यांमार के साथ द्विपक्षीय बैठकों व बातचीत के बावजूद रोहिंग्या विस्थापितों में से एक भी व्यक्ति की अभी तक अपने पैतृक घरों तक वापसी संभव नहीं हो पाई है। उन्होंने जनरल डिबेट को संबोधित करते हुए चिंता जताई कि बांग्लादेश में रोहिंग्या समुदाय की मौजूदगी से गंभीर चुनौतियां पैदा हो रही हैं और इस संकट को सुलझाने के लिए यूएन के समर्थन की दरकार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनरल डिबेट को संबोधित करते हुए कहा कि हाल के दिनों में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण देश का विशाल हिस्सा अब भी जलमग्न है। इसके मद्देनजर उन्होंने भूतपूर्व जलवायु तबाही के नतीजों का सामना करने के लिए वैश्विक समर्थन की पुकार लगाई है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने यूएन महासभा के 77वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश में सामाजिक अशांति और विरोध प्रदर्शनों के लंबे दौर के बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था व दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता बहाल करने के लिए संस्थागत फ्रेमवर्क को मजबूत किया जा रहा है। उधर चीन के विदेश मंत्री ने जनरल डिबेट को संबोधित करते हुए कहा, हम एक ऐसे दौर में हैं जो चुनौतियों से भरा हुआ है। कोविड-19 बारंबार अपना सिर उठा रहा है। वैश्विक सुरक्षा अनिश्चितता का सामना कर रही है। आर्थिक पुनर्बहाली नाजुक और विषम है और विभिन्न तरह के अन्य जोखिम व संकट उभर रहे हैं। उच्च स्तरीय जनरल डिबेट में इस वर्ष भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने किया और उन्होंने विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए याद दिलाया कि भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसे उन्होंने करोड़ों भारतीय लोगों के कड़े परिश्रम, पक्के इरादे, नवाचार और उद्यमशीलता की कहानी करार दिया। उन्होंने यूक्रेन में युद्ध का जिक्र करते हुए ये सवाल उठाया कि भारत यूक्रेन की तरफ है या रूस की तरफ। उन्होंने कहा, भारत शांति की तरफ है और उसी तरफ दृढ़ता के साथ रहेगा। हम उस तरफ हैं जहां यूएन चार्टर और उसके बुनियादी सिद्धांतों का सम्मान होता है। हम उस तरफ हैं जहां से संवाद और राजनय को ही एकमात्र रास्ता अपनाने की पुकार उठती है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत है, क्योंकि ये पुरानी पड़ चुकी है और प्रभावहीन है। उन्होंने अपने संबोधन के अंत में कहा, हमारा ये मानना है कि हम इसकी हिमायत भी करते हैं कि ये दौर युद्ध या संघर्ष का नहीं है, इसके उलट ये समय विकास और सहयोग का है। ये बहुत अहम है और हम राजनय की क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता में भरोसा जारी रखें।
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने ईरान में एक 22 वर्षीय महिला महसा अमीनी की मौत की कड़ी निंदा की है। महसा अमीनी को पुलिस ने कथित तौर पर सही तरीके से हिजाब नहीं पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया था और कुछ दिन बाद पुलिस हिरासत में ही अमीनी की मौत हो गई। यूएन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने गुरुवार को जारी एक वक्तव्य में कहा है कि हम महसा अमीनी की मौत पर बहुत दुखी और सदमे में हैं। खबरों के अनुसार महसा अमीनी को ईरान की नैतिकता पुलिस ने 13 सितंबर को गिरफ्तार किया था। महसा अमीनी वजारा बंदी केंद्र में कथित तौर पर बेहोश हो गई थी और शुक्रवार 16 सितंबर को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि महसा अमीनी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा, हम देश के अधिकारियों द्वारा तैयार अनिवार्य हिजाब नीतियों को लागू करते समय महिलाओं के विरुद्ध हिंसा प्रयोग और मूलभूत इंसानी गरिमा से वंचित किए जाने की कड़ी निंदा करते हैं। शुक्रवार 16 सितंबर के बाद से देश भर में हजारों लोग युवा महिला महसा अमीनी की मौत के लिए जवाबदेही निर्धारित किए जाने की मांग के साथ सड़कों पर उतर पड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाहक मानवाधिकार उच्चायुक्त नादा अल नशीफ ने महसा अमीनी की हिरासत में मौत होने पर चिंता व्यक्त की।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
आ सदा शांति दे दे हे शांति दाता, हमें ज्योति दे दे हे ज्योति दाता, सदा शांति दे दे हे शांति दाता, हमें ज्योति दे दे हे ज्योति दाता, हे ज्योति दाता।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। अंतर्राष्ट्रीय संत थॉमस अक्वाइनस बंधुत्व संगठन की 60वीं वर्षगांठ पर संत पापा फ्रांसिस ने रोम की तीर्थयात्रा पर आए संगठन के प्रतिनिधियों को बधाइयां अर्पित की तथा द्वितीय वेटिकन महासभा की शिक्षाओं के प्रचार के लिए संगठन के योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की। संत पापा ने कहा कि द्वितीय वैटिकन महासभा की नवीनताओं में से एक सुसमाचार मिशन के प्रति लोकधर्मियों के अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक होना था। उन्होंने कहा कि लोकधर्मियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने मेषपालों के साथ संबद्ध होकर विश्व में व्याप्त हलचल के बीच सुसमाचार के प्रकाश को फैलाएं। संत पापा ने कहा कि यह देखकर आश्चर्य होता है कि कैसे पवित्र आत्मा यीशु के शिष्यों में प्रेरित प्रतिभाओं के माध्यम से मनुष्य की हर वास्तविकता में अपना रास्ता बनाता है। उन्होंने कहा कि आज हम देखते हैं कि कैसे आपके संगठन ने इस संदेश का स्वागत किया है और संस्कृति, युवाओं तथा परिवार के प्रचार के लिए विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इससे विश्व के विभिन्न हिस्सों में स्कूलों, विश्वविद्यालयों और छात्रावासों जैसे विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों का निर्माण हुआ है। उन्होंने स्मरण दिलाया कि संत थॉमस अक्वाइनस के युग यानी कि 13वीं शताब्दी में भी बहुत सी चुनौतियां थी। पश्चिम में यूनानी दार्शनिक अरस्तु के लेखन की फिर से खोज की जा रही थी। कुछ लोग उनके कार्यों का अध्ययन करने के अनिच्छुक थे क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी मूर्ति पूजक सोच ईसाई धर्म के विरुद्ध हो सकती थी। तथापि संत थॉमस ने यह खोज निकाला कि अरस्तु की अधिकांश कृतियां ख्रिस्तीय रहस्योद्घाटन के अनुरूप थीं। इसका यह अर्थ हुआ कि संत थॉमस यह दर्शाने में सक्षम थे कि विश्वास और तर्कणा के बीच एक प्राकृतिक सामंजस्य है। संत पापा ने कहा कि जब हम इस समृद्धि के बारे में जागरूक होते हैं तो कट्टर पंथ, कट्टरपंथियों और नकारात्मक विचारधाराओं पर काबू पाना जरूरी हो जाता है और ख्रीस्त के सुसमाचार को विभिन्न संस्कृतियों तक पहुंचाने के लिए एक व्यापक मार्ग खुल जाता है। संत पापा ने कहा, अपने करिश्मे को जीने में, जिसे आप शिक्षा के माध्यम से ठोस रूप से महसूस करते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि आप याद रखें कि शिक्षण दया के आध्यात्मिक कार्यों में से एक है। शिक्षा मनुष्य के जीवन के प्रत्येक तत्व को एक अर्थ, एक आख्यान प्रदान करती है। यह ज्ञान साझा करने या कौशल विकसित करने में समाप्त नहीं हो जाता, अपितु जैसा कि इसकी उत्पत्ति से पता चलता है, यह प्रत्येक व्यक्ति में व्याप्त अच्छाई को लाने में मदद करता है, उस हीरे को परखने में जिसे प्रभु ईश्वर ने प्रत्येक के अंतर में रखा है। खाद्य अपशिष्ट और क्षति पर जागरूकता को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में रोम स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य और कृषि संगठन FAO को गुरुवार को प्रेषित एक संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक न्याय की कमी को रेखांकित किया जो विश्व की लगभग एक तिहाई आबादी को पर्याप्त भोजन करने से रोकता है। उन्होंने कहा कि हमें खाद्य पदार्थों को पुनर्वितरण के लिए इकट्ठा करना चाहिए, तितर बितर करने के लिए उनका उत्पादन नहीं करना चाहिए। खाद्य और कृषि संगठन FAO के महानिदेशक क्यू डोंगयू को प्रेषित संदेश में संत पापा ने कहा, खाना बर्बाद करने का मतलब है लोगों को बर्बाद करना। उन्होंने कहा, अपने आप को शब्दों तक हम सीमित न रखें, अपितु न्याय की मांग करने वाले, भूखे लोगों के दिल दहलाने वाले विलाप का प्रभावी ढंग से जवाब दें। संत पापा फ्रांसिस ने लिखा, अनुचित तरीके से भोजन का उपयोग करना, इसे बर्बाद करना या खोना फेंकने वाली संस्कृति के अनुरूप है और जीवन के मौलिक मूल्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने लिखा, भोजन प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक और प्राथमिक अधिकार है, अस्तु यह जानते हुए कि बहुत से लोगों के पास पर्याप्त भोजन या इसे प्राप्त करने के साधन नहीं है, भोजन को सिर्फ इसलिए कूड़े में डाल देना क्योंकि इसे इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाने के संसाधन नहीं है, वास्तव में शर्मनाक और चिंताजनक है। इस बात की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया कि असमानताएं बढ़ रही हैं और प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार समस्त विश्व में खाद्य और पोषण सुरक्षा की स्थिति गंभीर होती जा रही है। उन्होंने लिखा, कई संकटों के कारण धरती पर पर्याप्त भोजन नहीं करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, भूखों का विलाप जारी है और इस विलाप को उन केंद्रों में गूंजना चाहिए जहां निर्णय लिए जाते हैं। इटली के मिलान शहर में 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जारी मिशन महोत्सव के प्रतिभागियों को संबोधित कर गुरुवार को संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि ख्रीस्त के अनुयायियों को शांति के गवाह बनकर मिशनरी भावना को विकसित करना चाहिए, इसलिए कि मिशन कलीसिया के जीवन का प्राण है। वैटिकन राज सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलीन द्वारा हस्ताक्षरित और मिलान के महाधर्माध्यक्ष मारियो देलपीनी को संबोधित पत्र में संत पापा फ्रांसिस ने मिशन महोत्सव के प्रतिभागियों का अभिवादन किया तथा वरदान से जीना शीर्षक से आयोजित उनकी सुंदर पहल की सराहना की। उन्होंने कहा, युग के इस परिवर्तन काल में विश्वास और कलीसिया की मिशनरी विशिष्टता को दिखाना महत्वपूर्ण है ताकि आज के लोगों में भी यह घोषणा की जा सके कि ईश्वर सदैव हमारे साथ हैं और हमसे प्रेम करते हैं। इताली कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन की प्रेरितिक इकाई इताली मिशन न्यास के तत्वाधान में उक्त मिशन महोत्सव का आयोजन मिलान महाधर्म प्रांत द्वारा किया गया है। ख्रिस्तियों से शांति के गवाह बनने का अनुरोध कर संत पापा ने कहा, समकालीन चुनौतियों और युद्धों की त्रासदी के बीच शांति के साक्षी बनना मिशन का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जिसे यीशु के शब्दों यानी कि शांति तुम्हारे साथ हो, मैं तुम्हें शांति देता हूं को याद कर वैयक्तिक रूप से जिया जाना चाहिए। अर्जेंटीना की राजधानी बोयनस आयरेस में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर दूसरे लातिनी अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिभागियों को प्रेषित एक वीडियो संदेश में वैटिकन स्थित अखंड मानव विकास संबंधी परम धर्म पीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल माइकल क्रेंजी ने पर्यावरण संकट को जमीनी स्तर पर संबोधित किए जाने का आह्वान किया। अपने वीडियो संदेश में कार्डिनल क्रेंसी ने कहा कि जलवायु कार्रवाई में स्थानीय सरकारों की भूमिका के बारे में बात करने का मतलब है कि लोगों और क्षेत्रों की कमजोरियों को सुनना तथा उन लोगों का साथ देना और उनके ठोस अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करना जो सार्वजनिक नीतियों, नियामक ढांचे और प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता की परिभाषा से बहिष्कृत हैं। साथ ही उन्होंने कहा, स्थानीय शासन के हस्तक्षेपों पर विशेष ध्यान देने का अर्थ है उन लोगों को प्रमुखता देना जो अक्सर हमारे समाज में सबसे निम्न और गौण माने जाने वाले लोगों के सबसे करीब होते हैं। उन्होंने स्मरण दिलाया कि लाउदातो सी विश्व पत्र में संत पापा फ्रांसिस ने वर्तमान वैश्विक पर्यावरण संकट से निपटने के लिए स्थानीय लोगों सहित स्थानीय समुदायों के अनुभव को शामिल करने और महत्व देने की आवश्यकता पर बल दिया है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।